नमस्कार भारत, 20 अक्टूबर दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के बीच आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू। करेंगे विश्लेषण इस डिबेट का और समझने की कोशिश करेंगे इसके तमाम पहलू।
लास वेगस से मैं ब्रजेश उपाध्याय बताऊंगा आपको इस डिबेट में कौन क्या कह रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश में डकैतों की पनाहगाह बीहड़ इलाकों में शेरों को बसाने की योजना खटाई में, सुनिए योजना की पड़ताल करती एक जमीनी रिपोर्ट।
जिस जगह पर लॉयन सफारी बनाया जा रहा है वो कभी अंग्रेज अफसरों की शिकारगाह हुआ करता था, बाद में यही बीहड़ डकैतों की पनाहगाह बन गए तो उन्हें भागने से रोकने के लिए यहाँ बबूल के पेड़ लगा दिए गए।
हर दिन की तरह समाचार पत्रों की सुर्खियाँ, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन आखिरी बार सीधी बहस के लिए कुछ ही देर में आमने सामने होंगे। दोनों के बीच तीसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल बहस नेवाडा राज्य के लास वेगस में शुरू होने जा रही है। अमरीका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद डोनाल्ड ट्रंप सर्वे में पिछड़ते नजर आ रहे हैं और उनके लिए अपनी लड़खड़ाती स्थिति को संभालने का ये अहम मौका माना जा रहा है। वहीं निजी ईमेल सर्वर मामले में आरोपों ने हिलेरी क्लिंटन की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारतीय सामग्री दिखाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पेमरा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 21 अक्टूबर यानी शुक्रवार दोपहर 3 बजे के बाद पाकिस्तान में भारतीय टीवी चैनलों का प्रसारण पूरी तरह से बंद रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने सुझाव दिया था कि जिस तरह पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारत में पाबंदी है, उसी तरह भारतीय टीवी चैनलों पर पाकिस्तान में रोक होनी चाहिए। अर्जेंटीना में एक 16 साल की लड़की के बलात्कार के बाद हत्या का विरोध जताने के लिए हजारों लोग कई शहरों में सड़कों पर उतरे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपील पर कई शहरों में महिलाएं एक घंटे के लिए कामकाज बंद कर सड़कों पर उतरी। बलात्कार की शिकार किशोरी लूसिया पेरेस की इसी महीने डेल प्लाटा शहर में मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा है कि बलात्कार से पहले लूसिया को मैरिजुआना और कोकीन जैसी नशीली दवाएं दी गई थी और उसे शारीरिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इस बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो रही ब्यूनस आयरस की एक महिला ने ये कहा। क्योंकि मैं कफन में जाने वाली अगली महिला नहीं बनना चाहती। समय तेजी से भाग रहा है और मुश्किल से 30 घंटे बीतते हैं कि एक और महिला की मौत हो जाती है। महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां, किशोर सभी यहां आए हैं। हम समाज की तरफ से आए हैं और कह रहे हैं कि अब एक भी और महिला कम न हो, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ और वो भी पीड़ित हैं, इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं। ये थे अर्जेंटीना में बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाले रोबोट स्कियापेरेली से संपर्क नहीं होने की वजह से इस रोबोट के नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक यूरोपीय स्पेस एजेंसी का इस रोबोट से संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये रोबोट सफलतापूर्वक मंगल पर उतरा है या नहीं। स्कियापेरेली रोबोट को लंदन के समय अनुसार बुधवार शाम 4 बजे और भारतीय समय अनुसार शाम 8:30 बजे मंगल की सतह पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। उतरने के बाद ये रोबोट रेडियो तरंगे भेजता, जिसके आधार पर वैज्ञानिक मंगल की सतह का परीक्षण शुरू करते। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के बीच लॉस वेगस में तीसरा और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय लॉस वेगस में मौजूद हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान भी जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम चलें लॉस वेगस ही चलते हैं। इशारा मिल रहा है मुझे शीशे के उस पार बैठे हमारे तकनीकी सहयोगी अजीत सारथी से कि ब्रजेश उपाध्याय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ब्रजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी आपको।
एक तरफ हिलेरी क्लिंटन हैं जो अमेरिका की विदेश मंत्री रह चुकी हैं और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जीवन संगनी है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कारोबार की दुनिया से राजनीति के मैदान में आए हैं और इस समय आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरों को पटखनी देने के लिए तैयार। बताएं आज कौन से दांव पेंच, क्या रणनीति नजर आ रही है आपको इन दोनों की?
जी हाँ संदीप, अब से बस कुछ पल पहले दोनों ही उम्मीदवार ने मंच पर कदम रखा है और पिछले डिबेट की तरह ही दोनों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। इस बार भी उससे ही अंदाजा आपको लग सकता है कि तेवर क्या होने जा रहा है यहाँ अगले 90 मिनटों में। आज तो ताजा जो सर्वेज आए हैं उसमें हिलरी क्लिंटन लगभग 9 पॉइंट से आगे चल रही हैं और उनकी कोशिश इस बढ़त को और पुख्ता करने की होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने आखिरी मौका है हिलरी क्लिंटन के बिल्कुल बराबर खड़े होकर अमेरिकी जनता को बताने का कि उनकी नीतियां हिलरी से बेहतर है। देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप हिलरी पर हमला करना जारी रखते हैं और उसमें 90 मिनट खत्म होता है या फिर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी पॉलिसी सामने रखते हैं जो अमेरिकी जनता का मन बदल सके। हिलरी क्लिंटन के सामने अपने ईमेल्स के मामले को दरकिनार करने का एक बड़ा मौका है और उनसे उस पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे और अब तक वो इस मामले पे बेहद संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई हैं। वहीं ट्रंप से महिलाओं पर उनके बयान और उन पर लगे यौन शोषण के आरोप के बारे में पूछा जाएगा और देखने वाली बात होगी कि उसका क्या जवाब होता है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि जो विवादास्पद बहस हुई है या बातें हुई हैं उन पर ही तूतू मैमे होती है या कुछ ठोस पॉलिसी दोनों उम्मीदवार सामने लेके आते हैं।
जी हम देख रहे हैं हिलेरी क्लिंटन ने
needs to stand on the side of the American people, not on the side of the powerful corporations and the wealthy.
जी ब्रजेश, हिलेरी क्लिंटन ने अपनी बात कहना शुरू किया है। एक बात बताएं आप कि एक से बढ़कर एक कैसिनोज और हर तरह की अय्याशी के लिए दुनिया भर में मशहूर है लॉस वेगस, ये मैं आपको ही कोट कर रहा हूं। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, यानी यहाँ जो कुछ होता है बात यहीं दबकर रह जाती है। क्या लगता है आपको, ये कहावत आज के डिबेट पर भी लागू होगी या इस डिबेट से जो अमृत छलकेगा, जो विष निकलेगा 3 हफ्ते बाद होने वाले चुनाव के नतीजे पर कुछ असर डालेगा? कितना कितना महत्वपूर्ण है आज का डिबेट?
देखिए बहुत अहम है ये डिबेट और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो और ज्यादा अहमियत ये रखता है, लेकिन कुल मिलाकर इसका डिबेट पर जनता पर क्या असर होगा ये कहना, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा असर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि 91% लोग मन बना चुके हैं अपना, 23 लाख लोग अर्ली वोटिंग्स में अपना वोट डाल चुके हैं। लेकिन जो कुछ कई ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि फेंस सिटर्स हैं, किनारे बैठे हुए हैं और वो आखिरी मौका एक देख रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार क्या पेश करते हैं। हिलरी क्लिंटन के सामने चुनौती है कि उनकी जो ईमानदारी पर सवाल उठते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस पर सवाल उठते हैं, उसको क्या वो दरकिनार कर पाएंगी। और ट्रंप पे सबसे बड़ी जो उनके सामने सवाल ये होगा कि क्या वो अमरीका को ये दिखाने में कायम हो सकते, उसकी सफल हो सकते हैं कि वो राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसको उसके अनुरूप काम कर सकते हैं।
जी आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहें। इस समय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुख्तदर खान। प्रोफेसर साहब कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। लॉस वेगस में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीसरा और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी है, आइए सुनते हैं इस समय वहाँ क्या बहस चल रही है।
Justice Ginsburg made some very, very inappropriate statements toward me and toward a tremendous number of people.
Las Vegas में इस समय Republican Party के उम्मीदवार Donald Trump अपनी बात रख रहे हैं। प्रोफेसर मुख्तदर खान आपसे जानना चाहेंगे, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा के सौतेले भाई हैं मलिक ओबामा, उन्हें अतिथि के तौर पर गेस्ट के रूप में इस बहस में आमंत्रित किया है। मलिक ओबामा ट्रंप के समर्थक हैं, बराक ओबामा से उनकी पटती नहीं है, तो मलिक ओबामा को बुलाकर ट्रंप क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे किस तरह समझा जाए?
दो चीजें हैं जो आप अगर कमेंटेटर्स को सुन रहे होंगे टेलीविजन पे, वो सब पजल है कि इनको बुलाने का मकसद क्या है। बट बात वादे है कि ये इनको इसलिए बुलाएं कि मलिक मुसलमान है, वो उनकी अभी मैंने तस्वीर देखी नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं जिस तरह से उन्होंने फोटोग्राफ वगैरह में हैं, वो ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं अपने सपोर्टर्स को कि सदर प्रेसिडेंट ओबामा मुसलमान हैं और उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म जैसे अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करते और इस मुल्क बेसिकली अफ्रीकन्स और मुसलमानों के हाथों में चला जा रहा है और गोरे और क्रिश्चियंस को चाहिए कि वो एकजुट होकर अमेरिका को वापस उनके हाथ में लेके आए जिनका ये मुल्क है। तो इस तरह की वो मैसेज, इस्लामोफोबिक मैसेज, रेसिस्ट मैसेज वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये जो प्रेसिडेंट ओबामा के भाई हैं वो रिपब्लिकन हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, उनकी हो सकता है कि उनका कोई पर्सनल इसमें मफाद हो सकता हो, लेकिन ये एक मैसेज है। इससे पहले भी उन्होंने दूसरे डिबेट के वक्त उन औरतों को वहां बुलाया था जिन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन के खिलाफ एक्यूजिशन किए थे सेक्सुअल मोलेस्टेशन के। एटलीस्ट वहां पे मकसद साफ था, वो बताना चाह रहे थे कि मैंने तो सिर्फ बुरी बुरी बातें की हैं, हिलरी क्लिंटन के शौहर ने बुरी बुरे काम किए हैं और हिलरी क्लिंटन ने उसके बावजूद उनको सपोर्ट किया। लेकिन ये एक एक जो मलिक को इन्होंने बुलाया उसे से मुझे यही लगता है कि वो बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका को वापस अमेरिकन के हाथ में होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, कार्यक्रम में बने रहें। ब्रजेश उपाध्याय, आपके पास हम दोबारा आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। आप इतने वर्षों से अमेरिका में हैं, राष्ट्रपति चुनाव कवर करते रहे हैं, क्या कहता है आपका अनुभव, क्या अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में धांधली होती है? ब्रजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है ब्रजेश उपाध्याय से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रोफेसर मुक्तदर खान कार्यक्रम में बने हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले दो डिबेट में ऐसा लगा है कि ट्रंप बहुत फोकस होकर डिबेट नहीं कर पाए, ऐसा लगा कि वो हिलेरी क्लिंटन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, जबकि हिलेरी क्लिंटन हर बार ज़्यादा फोकस नज़र आईं। अब इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिबेट में पैट्रिशिया स्मिथ को आमंत्रित किया है, जिनका बेटा लीबिया के बेनगाजी में अमरीकी मिशन पर साल 2002 में जो हमला हुआ था उस हमले में मारा गया था, तब जब अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन थी। क्या इसे विदेश नीति के मोर्चे पर हिलेरी क्लिंटन को घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जाए?
हाँ, मतलब इस डिबेट में फॉरेन पॉलिसी पे चंद सवाल होंगे और जो रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो पिछले दो ढाई साल से तकरीबन जब से ये लीबिया का एपिसोड हुआ है ये बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे जो अमेरिकन हलाक हुए वो हिलरी क्लिंटन की नेग्लिजेंस के वजह से हुए हैं और हिलरी क्लिंटन ने जिम्मेदारी नहीं ली, और उसे ब्रॉडर मैसेज ये है कि वो कमांडर इन चीफ बनने के काबिल नहीं है, उन्होंने अमेरिकन लाइफ, वो खासतौर से अमेरिका के एम्बेसडर की लाइफ को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी हम देनी चाहिए। लेकिन हिलरी क्लिंटन ने कई के बारे में कांग्रेस ने कई सर्वेस किए हैं, टेस्टिफाई किए, हिलरी ने कई घंटों टेस्टिफाई किए हैं लिबिया और बेंगाजी के ऊपर और एक भी उन्होंने कुछ एक्यूजेशन या चार्ज स्टिक नहीं हुआ है। तो बस ये अपनी बेस को एक्साइट करने के लिए, क्योंकि पिछले चंद दिनों से जिस तरह से वीडियोस रिलीज हुए हैं ट्रंप के पर्सनल कैरेक्टर के ताल्लुक से और जो औरतें सामने आई हैं एक्यूज करते हुए कि ये बिल्कुल घटिया किस्म का इंसान है, उसके वजह से जो उनका बेस है जिसमें क्रिश्चियन इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस है और मॉर्मन्स हैं वो उनसे जरा दूर होते जा रहे हैं, खास तौर से यूटा में। तो जो यूजुअली रिपब्लिकन स्टेट होता है क्रिश्चियन मॉर्मन्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल बदन हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस डिबेट में एक सबसे बड़ा अहम काम ये है कि अपना जो ओरिजिनल जो बेस था उनका दो महीने पहले जब उनको तकरीबन 44-45% सपोर्ट मिल रहा था इलेक्टोरेट से वो वापस कंसोलिडेट करने की कोशिश है। तो फोकस उन्होंने अपने कैरेक्टर से हटाकर हिलरी क्लिंटन के जो तीन चार फेलियर्स माने जाते हैं कंजर्वेटिव सर्कल्स में, एक वो ईमेल लीक्स जिसमें उन्होंने क्लासिफाइड ईमेल्स को इरेज कर दिया, दूसरा बेंगाजी का जो स्कैंडल है, तीसरा बिल क्लिंटन का जो फाउंडेशन है उसका जो क्विड प्रो को जो कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थोड़े कंसेशन किए उनको जो पैसे देते रहे बिल क्लिंटन के फाउंडेशन, ये तीन चीजों पे वो फोकस करने की कोशिश करेंगे, ये प्लान है। अब देखना चाहिए कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं।
अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुख्तदर खान और लॉस वेगस से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय कार्यक्रम में शामिल होने और इस डिबेट पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे अगले कार्यक्रम विश्व भारती में भी हम चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी दोबारा दर्ज हो।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आज है 20 अक्टूबर दिन गुरुवार और इससे पहले कि हम बीते 2 दिन से जारी एक विशेष श्रृंखला की तीसरी कड़ी आपको सुनवाएं, उससे पहले नजर डालते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। हरिता कांडपाल स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी, जब दिल्ली से छपे अखबारों की बात करते हैं तो सबसे पहले उस जगह की बात करते हैं जो काफ़ी चर्चा में रही है, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि JNU के VC और रजिस्ट्रार को छात्रों ने बंधक बना लिया। दरअसल ये मामला नजीब नाम के एक छात्र से जुड़ा हुआ है जो गायब है पिछले लगभग चार दिन से और उसे लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है। दरअसल बात यह कि कहा यह गया कि ABVP से झड़प के बाद ही वो गायब हो गया है, ऐसा बताया गया है। और छात्रों का आरोप है कि प्रशासन जो है गुमशुदगी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो है ये सब हंगामा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने प्रमुख रूप से एक तस्वीर को जगह दी है, उसकी हेडिंग है पनीर कुर्सी पर और अम्मा फ्रेम में।
ये पनीर सेल्वम की बात हो रही है।
पनीर सेल्वम की बात हो रही है। ये तस्वीर है तमिलनाडु की कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री जयललिता बीमार है, काफ़ी दिनों से अस्पताल में हैं और उनकी जिम्मेदारी जो है वो ओ पनीर सेल्वम जो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं उनको दी गई है। बताया जा रहा है कि वो खुद CM की कुर्सी पर नहीं बैठे बल्कि उन्होंने जयललिता की तस्वीर वहाँ सामने रखी और वो उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया उस तरह से। आगे बढ़ते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुख एक हेडलाइन छापी है। केरल का एक युवक है जो माना जा रहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए लोगों को नियुक्त करने वाला प्रमुख है और वो भारतीयों को जो है बहलाकर अफगानिस्तान भेजता था और 3 देश जो है वो इसकी तलाश कर रहे हैं। द पायनियर की एक खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने एक नए अभियान का आह्वान किया है, ऑक्यूपाई इस्लामाबाद। और बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि चीन के राजदूत इससे घबरा गए हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो नवाज शरीफ को घेरने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये 2 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बीच जो है चीन के राजदूत ने इमरान खान से मुलाकात की और उनसे आश्वासन लिया कि चीन के जो निवेश है पाकिस्तान में उस पर तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब आगे बढ़ते हैं कि फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को लेकर
मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।
हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर एक खबर छापी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फिल्म के आड़े जो भी लोग आएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और आखिर में एक खबर बता देती हूँ, जनसत्ता के पहले पन्ने पर सबसे नीचे हेडलाइन दी गई है कि क्या साइकिल पर अकेले चलेंगे अखिलेश। दरअसल उन्होंने जो है अपनी एक अलग यात्रा का ऐलान किया है और समाजवादी पार्टी के एक बड़े कार्यक्रम से दूर रहने का संकेत दिया है।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की समीक्षा के बाद। अब बात बीबीसी हिंदी की उस श्रृंखला की जिसकी तीसरी कड़ी आज हम प्रसारित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुलायम परिवार के सौजन्य से होने वाले सैफई महोत्सव की चर्चा तो आपने अक्सर सुनी होगी। उसके बाद यहाँ जिस बात की चर्चा ज़्यादा होती है वो है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला लॉयन सफारी। चंबल के बीहड़ों में शेरों की दहाड़ सुनाने के लिए मुलायम और अखिलेश सरकार ने यूं तो हर संभव कोशिश की, लेकिन गुजरात के जंगलों से लाए गए शेरों की लगातार हो रही मौतों ने इन सपनों पर एक तरह से पलीता लगा दिया है। समीर आत्मज मिश्र की विशेष रिपोर्ट।
इटावा जिले की गिनती कभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उन जिलों में होती थी जहां के बीहड़ों में डकैतों का खौफ रहता था, लेकिन जब बीहड़ डकैतों से आज़ाद हुए और इटावा ज़िले के सैफई गांव से मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार देश और प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आया तो अपने गांव और इस शहर में इन लोगों ने तमाम ख्वाब देखे। उन्हीं ख्वाबों में से एक ये भी था कि जिन बीहड़ों से बंदूकों की आवाज़ें आती थीं उन्हीं बीहड़ों में शेरों की दहाड़ सुनाई दे। इटावा जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर 350 हेक्टेयर के बीहड़ इलाके में बन रहे लॉयन सफारी में शेरों के रहने लायक माहौल तैयार करने की खूब कोशिश की गई, लेकिन शेर हैं कि रहने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 2 साल के भीतर अब तक कुल 9 शेरों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 गुजरात के वन्य जीव अभयारण्यों से लाए गए शेर हैं और बाकी उनके बच्चे थे। ये शेर क्यों मर रहे हैं? इटावा लॉयन सफारी पार्क के उपनिदेशक अनिल कुमार पटेल बताते हैं।
मेजर जो था वो तो ये है कि एक वायरल इन्फेक्शन है कैनाइन डिस्टेंपर का, जिसकी वजह से 3 शेर उन एक्सपायर किए, और एक चौथा जो शेरनी थी तपस्या, वो एक बवेसिया नामक हीमोप्रोटोजुवन होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से उसका डेथ हुआ था। ये दोनों अगर आप कॉजिटिव एजेंट देखेंगे वो किसी भी एनिमल को हो सकता है।
पटेल कहते हैं कि ये बीमारी इन शेरों को पहले से थी या फिर यहाँ आने पे हुई पता नहीं, लेकिन शेरों में ये बीमारी अक्सर पाई जाती है और गुजरात में भी कई शेर इस बीमारी से मर चुके हैं। इटावा में लॉयन सफारी का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त तैयार किया था जब वो 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इटावा के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाह के कहते हैं,
असल में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने इसको लॉयन सफारी को तैयार करने का खाका किया। 5 आते आते लॉयन सफारी पे कुछ काम शुरू हुआ धरातल में, लेकिन मुलायम सरकार चली गई, उसके बाद में दूसरी सरकार आई तो जो प्रोजेक्ट था पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। अखिलेश यादव जब उनके बेटे मुख्यमंत्री बने तो प्रोजेक्ट को एक बार फिर से फाइलों से निकाल करके धरातल पर लाने की कोशिश की गई। तमाम अड़चनों और अड़ंगों के बाद में फिर से एक बार प्रोजेक्ट चालू हुआ।
वन्य जीवों के कुछ जानकार कहते हैं कि ये इलाका और यहाँ का पर्यावरण शेरों के अनुकूल नहीं है, बावजूद इसके शेरों को जबरन गुजरात से लाया जा रहा है। इनका दावा है कि वातावरण के अनुसार खुद को न ढाल पाने के कारण ही शेरों की मौत हो रही है, लेकिन अनिल कुमार पटेल ऐसा नहीं मानते।
ये कहना मतलब कि इन्वायरमेंट यहाँ का जो कंडीशन नहीं है उसको हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ये बोलता है कि ये एरिया, इस एरिया में एक टाइम में शेर पाए जाते थे, और अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशन देखें तो गुजरात और वेस्टर्न यूपी पर्टिकुलरली जहाँ पे आजकल ये शेर रखे गए इटावा में, तो गर्मी तो मोर आर लेस सेम है, केवल विंटर में टेम्परेचर डाउन होता है जिसका हम लोग पूरा बंदोबस्त करते हैं कि उनको कोल्ड साग से बचाया जा सके।
चूंकि लॉयन सफारी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, इसलिए शेरों के मरने पर दोनों खासे चिंतित भी हैं। मुलायम सिंह यादव तो सार्वजनिक रूप से और संसद में भी इसे व्यक्त कर चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव ने शेरों के मरने के कारणों की जांच और उनके इलाज के लिए अमरीका और ब्रिटेन से भी विशेषज्ञ बुलाए। ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने लॉयन सफारी आकर यहाँ के शेरों के अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया है। दिनेश शाह के शावकों और शेरों के मरने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हैं।
अफसरों को जिम्मेदार इसलिए ठहराया जा सकता है कि जब प्लेटफार्म तैयार नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुए था लॉयन सफारी के भवनों का, तो उस दरमियान ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई अफसर मुख्यमंत्री या बड़े अफसरों को इस बात की जानकारी देने की स्थिति में होता कि यहाँ पर जो शेर ला करके छोड़े जा रहे हैं, उस दरमियान की जब निर्माण चल रहा है और निर्माण चलने के दरमियान ही ये सब चीज़ें घटित होना शुरू हुई। हालांकि उनकी सोच बहुत बेहतर थी, उन्होंने ये सोचा था कि चंबल की जो डाकू छवि है पूरी देश दुनिया में फैली हुई, हम उसको ख़त्म करेंगे लॉयन सफारी के जरिए, इटावा को पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाएंगे।
बताया जाता है कि इटावा के इस इलाके में कभी शीशम के पेड़ों के घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन कथित जंगल माफिया के चलते अब यहाँ शीशम के पेड़ ढूंढने पर भी नहीं मिलते। दिनेश शाह के बताते हैं कि जिस जगह पर लॉयन सफारी बनाया जा रहा है वो कभी अंग्रेज अफसरों की शिकारगाह हुआ करता था, बाद में यही बीहड़ डकैतों की पनाहगाह बन गए तो उन्हें भागने से रोकने के लिए यहाँ बबूल के पेड़ लगा दिए गए। यही बबूल के पेड़ ही आज शेरों को जीवित रहने लायक उपयुक्त माहौल मिलने में दिक्कत कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग इन बबूल के पेड़ों की जगह छायादार पेड़ लगाने पर तेजी से काम कर रहा है। लॉयन सफारी के लिए राज्य सरकार पर राजनीतिक रूप से भी कई आरोप लगे हैं। शेरों के मरने के बाद विपक्षी दलों की ओर से अक्सर ऐसी प्रतिक्रियाएं आईं कि सरकार नकली लॉयन सफारी बनाने की जिद पर अड़ी है और लुप्त प्राय शेरों को मार रही है, लेकिन लॉयन सफारी के अधिकारी इस बात से सहमत नहीं है। लॉयन सफारी पार्क के निदेशक के प्रणव राव को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
जितने भी हम फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड किए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सभी मानकों के स्तर के हैं, और जितनी जगहों पे भी लायन से संबंधित ब्रीडिंग के बारे में हो, लायन से डिफरेंट जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में हो, या वायरोलॉजिकल के जो कंडीशंस के बारे में, वो जितने एक्सपर्ट से संभव हो सकेगा उससे सारे एक्सपर्ट्स के हम लोग ओपिनियन लेके उनकी ट्रीटमेंट की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो इससे हमें उम्मीद है कि जिस चीज़ हमारे लिए इस अब तक एक ड्रॉबैक के रूप में हो रहा था, हम उसके ऊपर विजय पाने की दिशा में पूरी तरह से अग्रसर हैं।
बहरहाल राज्य सरकार के निर्देश पर लॉयन सफारी में शेरों का मन बहलाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। यही नहीं, शेर के बच्चों का जन्म होने के बाद उनकी खास देखभाल के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करके नया सेंटर बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही दो शावक और पैदा हुए हैं, जिससे अधिकारी काफी उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग लॉयन सफारी देखने के लिए इटावा आएंगे और उन्हें शेरों की दहाड़ भी सुनने को मिलेगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC इटावा।
और अब खेल समाचार।
5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में 6 विकेट से जीतने के बाद अब भारतीय टीम आज दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मैच खेलने उतरेगी। पहले तो टेस्ट सीरीज में 3-0 से करारी हार और उसके बाद पहले एक दिवसीय मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम कोई खास संघर्ष नहीं कर सकी, इससे उनके हौसलों में निश्चित रूप से कमी होगी। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम अपने कई जाने पहचाने चेहरों के बिना भी दमदार खेल दिखा रही है। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन चोटिल हैं तो सुरेश रैना भी पूरी तरह फिट ना होने के कारण दूसरा एक दिवसीय मैच भी नहीं खेल सकेंगे। टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को करारे झटके देने वाले आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी को भी आराम दिया गया है। इसके बावजूद जिसे भी अवसर मिला उसने दमदार खेल दिखाया। पिछले मैच के साथ अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले हार्दिक पांड्या ने भी तेज गेंदों से धर्मशाला में खेले गए मैच में 31 रन देकर 3 विकेट झटके। उमेश यादव ने भी 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पारी को जमने ही नहीं दिया। रही सही कसर लेग ब्रेक गेंदबाज अमित मिश्रा ने पूरी कर दी, उन्होंने भी 49 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। पिछले मैच में एक समय तो न्यूजीलैंड के 7 विकेट केवल 65 रन पर गिर चुके थे। ऐसे में सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम ने नाबाद 79 और टिम साउदी ने जैसे तैसे 55 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 190 रनों तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड की टीम भारत में टेस्ट सीरीज खेल चुकी है, यानी ऐसा नहीं है कि वो अभी तक भारतीय विकेटों के अनुकूल नहीं हो सकी है। ऐसे में उसका ऐसा प्रदर्शन बेहद निराश करने वाला है। कप्तान केन विलियमसन, सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल के अलावा रॉस टेलर का बल्ले से ना चल पाना न्यूजीलैंड के लिए समस्या बन गया है। दूसरी तरफ भारत के विराट कोहली ने पिछले मैच में शानदार नाबाद 85 रनों की पारी खेलकर दिखाया कि उनसे पार पाना न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए टेढ़ी खीर है। कभी कोटला के मैदान में ही पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा कर चुके भारत के कोच पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले भी न्यूजीलैंड पर कसे शिकंजे को ढीला नहीं करना चाहते।
हम ऐसे रिकॉर्ड के तौर पर ऐसे नहीं सोचेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि धर्मशाला में जो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन दिए इस मैच में भी वही कॉन्फिडेंस से खेलेंगे।
उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की शुरुआत तब खराब हुई जब क्वालिफिकेशन मुकाबले में ही पुरुष एकल वर्ग में पी कश्यप और मिश्रित युगल में प्रणव जैरी चोपड़ा और NCK रेड्डी की जोड़ी हारकर बाहर हो गई। कल BSAI प्रणीत पुरुष एकल वर्ग में थाईलैंड के तानुंग साक सायन सोम बुनसुक से 21-17, 19-21, 21-15 से हार गए। अजय जयराम जरूर जीतने में कामयाब रहे, उन्होंने थाईलैंड के बुनसाक पोनसाना को 21-15, 21-16 से हराया।
खेल समाचारों के बाद कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के बीच आखिरी प्रेसिडेंशियल बहस नेवादा राज्य के लास वेगास में जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीमा पर दीवार बनाने के मुद्दे पर हिलरी क्लिंटन को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारतीय सामग्री दिखाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अर्जेंटीना में एक 16 साल की लड़की के बलात्कार के बाद हत्या का विरोध जताने के लिए हजारों लोग कई शहरों में सड़कों पर उतरे। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाले रोबोट स्किया परेली से संपर्क नहीं हो पाने की वजह से इस रोबोट के नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस, जर्मनी और फ्रांस के साथ चल रही बैठक में समझौते पर सहमति बन गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। एक घंटे के बाद फिर हाजिर होंगे विश्व भारती लेकर। तब तक संदीप सोनी को दीजिए इजाजत।